प्रतिमा लगी हुई थी बहुत कुछ वर्ष पहले जो है, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि उसमें न मूर्ति है और बीच में सुने हैं कि गर्दन जो है टूटा हुआ है, क्या मतलब इस पे?
पहले तो आप सबको नमस्कार और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भेलवा में मूर्ति लगी हुई थी, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी कारणवश आज वहां मूर्ति नहीं है, ना कस्तूरबा जी की मूर्ति है ना गांधी जी की मूर्ति है। ये प्रशासन का फेल्योर है कि एक हिस्टोरिकल जगह, एक ऐतिहासिक जगह जहां गांधी जी खुद आए थे, जहां नील की खेती होती थी, हमारे पूर्वजों ने नील की खेती का विरोध किया और गांधी जी को यहां बुलाया, आज उस जगह को भी हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। अगर इस देश में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की भी मूर्तियों को अगर हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं इस एनडीए सरकार में, इस नीतीश सरकार में, तो ये निंदनीय है। मैं सरकार से और प्रशासन से अपील करूंगा कि अगर वो सक्षम नहीं है तो वो जन अधिकार परिवार को, अभिजीत सिंह को, ढाका विधानसभा के हमारे कार्यकर्ताओं को परमिशन दे, हम जनता इकट्ठा करके हम अपने कोष से उसको बनवाएंगे।
नहीं, एक आप सीधा चले गए आप नीतीश कुमार पे, स्थानीय स्तर पे जो है भी प्रशासनिक एक लेवल बना हुआ है, जनप्रतिनिधि बना हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीते हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राजनीति, आप देखें तो पिछले 4-5 महीने से वो लगातार चुनाव में है, पंचायती चुनाव में भी वो इन्वॉल्व है और वो कहते फिर रहे हैं कि अगर आप हमको पंचायत चुनाव में 1 वोट दीजिएगा, अभी शायद चिरैया से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, जब वो ढाका से चुनाव हार गए तो अब चिरैया के भी पंचायत चुनाव में हो गए हैं और कह रहे हैं कि अगर 1 वोट दीजिएगा तो 1 विधायक भी फ्री में मिलेगा। उन्होंने तो खुद अपने बीजेपी के चिरैया विधायक को प्रश्न चिन्ह उठा दिया है। जो व्यक्ति ढाका का विकास नहीं कर पा रहा हो, जो व्यक्ति ढाका की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा हो, वो दूसरे विधानसभाओं में अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। तो बीजेपी का तो शुरू से रहा है कि वो अच्छे प्रचारक हैं, आरएसएस एक प्रचारक संस्था है, मोदी जी एक अच्छे प्रचारक हैं, ये मानते हैं हम, लेकिन अच्छे शासक नहीं है और उसी के कारण आज ऐसे लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया कि वो भी यहां के अच्छे शासक नहीं है। आज देखिए कि ढाका घोड़ा साहब के अंदर बस स्टैंड नहीं है, उनके घर जाने के लिए ढाका गांधी चौक से फुलवरिया जो उनका घर है वहां जाने के लिए सड़क आज तक चौड़ा नहीं हुआ, पीछे 5 साल भी वो भी विधायक रहे हैं। और फुलवरिया घाट की अगर बात करें तो स्थिति बहुत ही खराब है, 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया वसूली होता है, वो वसूली किसके घर में जाता है? आदरणीय जनप्रतिनिधि के घर में जाता है। बस स्टैंड तो है नहीं ढाका घोड़ासन में, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी ने सदन में मोतिहारी के एयरपोर्ट की मांग करती। क्या मोतिहारी के में विधायक नहीं है? क्या मोतिहारी के विधायक के अंदर एक गुण नहीं है कि वो सदन में इस बात को उठाए? वहां भी तो बीजेपी के ही विधायक हैं।
अच्छा ठीक है, मान लीजिए अगर बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, अभी नीतीश कुमार नीतीश सरकार अच्छे नहीं है, फिर भी उपचुनाव में आपको सफलता नहीं मिली, मतलब अपोजिशन को सफलता नहीं मिली, फिर भी
देखिये उपचुनाव में सफलता न मिलना इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो महागठबंधन के सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर निर्भर था। उन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन को तोड़ दिया, सबसे बड़ी गलती की। इसीलिए आदरणीय पप्पू यादव जी ने, जन अधिकार पार्टी परिवार ने कहा कि आरजेडी जो है वो बीजेपी की बी टीम बनके काम कर रही है चुनाव में। चुनाव खत्म हो गया, आदरणीय लालू यादव दिल्ली चले गए, इससे तो विपक्ष नहीं चलेगा, विपक्ष को मजबूत होना होगा और विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा ऐसे धर्म के प्रचारक और जातिवाद के प्रचारक सत्ता में बने रहे।
अभिजीत जी आप भी विपक्ष में हैं, इस पर क्या कहेंगे?
हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में हैं, हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, हमारी पार्टी पप्पू जी ने कांग्रेस को समर्थन दिया, हम वहां जाके हम लोगों ने वहां काम किया। लेकिन अगर आप चुनाव से पहले आप मुझे ये बताइए, किसी के घर में कोई शादी हो और शादी से पहले घर का गार्जियन जो है बंटवारा कर दे तो क्या वो शादी सही ढंग से हो सकती है? अगर आपको गठबंधन तोड़ना था तो आपने गठबंधन किया क्यों? जो व्यक्ति गठबंधन धर्म को नहीं निभा सके वो हमारे बिहार वासियों के लिए क्या करेगा? तो ये सवाल तो है, क्योंकि विपक्ष, अब देखिए हिमाचल प्रदेश में आज आप लोग कहेंगे पेट्रोल डीजल का सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया, हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं कि उस पर तो बहुत ज्यादा एक्साइज है, 64% एक्साइज दिया जाता है, एक्साइज कम किया जाए। तीन पार्लियामेंट किस जीते, आप हिमाचल प्रदेश में हारते हैं और आप एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं। इससे क्या निकलता है कि इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं आप ज्यादा वसूली कर रहे हैं। ये सरकार कंप्लीट और कंप्लीट असूली माफिया के जैसा काम कर रही है, उद्योगपतियों के लिए एक सिंडिकेट के तौर पे काम कर रही है कि पैसा लाओ और पैसा उद्योगपतियों को दे दो। अडानी को कितना लोन है भारत में कोई बताने के लिए तैयार नहीं। आरटीआई कानून जो यूपीए सरकार लाई थी, जिसका समय सीधा निर्धारित था कि 21 दिन में, 15 दिन में, 28 दिनों में रिपोर्ट आएगी, आज एक आरटीआई करने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आती है। अभी मोतिहारी में एक आरटीआई कार्यकर्ता की मृत्यु भी हो गई, उसे गोली मार दिया गया या उसका खून हो गया, आज तक उसकी रिपोर्ट सही से नहीं आ पाई। और जहां तक आपने गांधी का सवाल किया, मैं वापस गांधी पे आऊंगा, क्योंकि गांधी इस देश के धरोहर हैं और रहेंगे। किसी की भी सरकार रहे, मोदी की सरकार है तो मोदी जब बाहर जाते हैं तो गांधी पर सबसे पहले फूल चढ़ाते हैं, बिना गांधी के मोदी भी नहीं कर सकते हैं। और आज भेलवा जो एक शान है ढाका विधानसभा का, आज यहां के प्रतिनिधि सोए हुए हैं, पंचायत चुनाव में इन्वॉल्व है, उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। सड़क हो, बस स्टैंड हो, रेल की समस्या हो, रेल का घोड़ासन का रोड देख लीजिए क्या स्थिति है, घोड़ासन बाजार की स्थिति देख लीजिए, अवैध वसूली होती है, और भेलवा बाजार की भी आप स्थिति देख लीजिए, वहां भी अवैध वसूली होती है। तो ये प्रतिनिधि का काम है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि केवल चुनाव जीतना जानते हैं, धर्म और जाति के नाम पर उनके पास कोई एजेंडा नहीं।
एक समय था जब कांग्रेस सत्ता में थी और जमीनी पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम बढ़ता था, अपोजिशन पूरी तरह से हावी होता था, हंगामा होता था, तो क्या इस समय अपोजिशन कमजोर पड़ गई है क्या?
देखिए, अपोजिशन में जिसके पास संख्या होती है सदन में, उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सदन में बिहार में आरजेडी की संख्या ज्यादा है, या यूं कहें कि वो सबसे बड़ी पार्टी है 70-75 सीटें लेके, लेकिन वो सड़कों पे नहीं है। सड़क पे कौन है? आदरणीय पप्पू यादव की पार्टी, जन अधिकार पार्टी। हर मुद्दों पर, चाहे किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, ऑक्सीजन का मामला हो, हर मुद्दे पे जन अधिकार पार्टी सड़कों पे उतर के लड़ाई लड़ रही है। यही काम अगर आरजेडी जन अधिकार पार्टी के साथ मिलकर काम करती, सड़कों पे होती, तो आज 2 उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होती और जो मनोबल नीतीश कुमार का गलत तरीके से बढ़ गया है वो नहीं बढ़ता। आज नीतीश कुमार से आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते।
अच्छा, आपके सुप्रीमो जो अभी जेल में है, इस पर आपकी पार्टी या जो भी वरीय है क्या मतलब?
नहीं, वो अब जेल से बाहर आ चुके हैं, अब वो जेल में नहीं है। और जिस केस में उनको अंदर किया गया था 32 साल पुराने मामले में, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। आपको जानकारी हो कि पप्पू यादव के ऊपर जितने भी केसेस हुए हैं अभी तक, उनमें कोर्ट ने उनको लगभग सारे केसों में बारी बारी से बाइज्जत बरी ही कर रही है। ये पॉलिटिकल केसेस हुए थे, पप्पू यादव आज जैसे हैं पहले भी वैसे ही थे, लोगों की सेवा और सेवादारी ही पप्पू यादव का लक्ष्य।
अच्छा, जेल जाना उनका क्या है, एम्बुलेंस मामला ही है कुछ और?
सर, जब आप किसी एम्बुलेंस से जब शराब ढुलवाएंगे, बालू ढुलवाएंगे और कोरोना काल में एम्बुलेंस को तिरपाल से ढक के रखेंगे, कोई सवाल करेगा तो आप उसे पुराने केसेस में डाल देंगे, यही तो बिहार की राजनीति।
चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा, आप भी चुनाव लड़े हैं, लगभग 1 साल बीतने जा रहा है और विधायक भी बन चुके हैं आपके ठक्का के जो है पवन जायसवाल जी, एक मैं भविष्यवाणी मैंने भविष्य किए करो, अगर आप जीते थे चुनाव जो है तो सबसे पहला काम क्या होता विधानसभा में आपका?
देखिए, जब मैं चुनाव लड़ने आया तो 20 तारीख को मेरा नॉमिनेशन था, 19 तारीख को मैंने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया और मैंने अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ा। मैंने सड़कों की बात की, बस स्टैंड की बात की, रेलवे की बात की, रोजगार की बात की, उर्दू लाइब्रेरी की बात की, ढाका के अंदर, ढाका एक सबसे पुराना 1972 में बना हुआ अनुमंडल, वहां एक महाविद्यालय की बात की, शिवहर पार्लियामेंट के अंदर 6 विधानसभा आते हैं और 12 प्रखंड आता है और वहां एक ही महाविद्यालय है जो घोड़ासन में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज है। सरकार कहती है कि ग्रेजुएट हो जाओगे तो क्लर्क की नौकरी मिलेगी, और स्थिति यह है कि यहाँ ग्रेजुएट होने के लिए केवल एक ही कॉलेज है। तो मैंने शिक्षा की लड़ाई की, मैंने यहां तक कहा था और मैं आज भी कहता हूं आपके माध्यम से कि मैं जब भी सदन में या किसी भी पद पे जाऊंगा तो मेरी तनख्वाहें, मेरे जो सरकारी पैसे मुझे मिलेंगे वो मैं शिक्षा संस्थानों को दूंगा। कॉलेजों में आज कितनी कमियां है, आज आप कंप्यूटर लैब में जाइए, लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कंप्यूटर लैब में एक कीबोर्ड तक नहीं है। आप किसान को कहते हो कि आप जो है अगर आपको धान अधि प्राप्ति कराना है तो आप जो है पोर्टल पे आकर रजिस्टर करिए, जिस देश के प्रधानमंत्री को आगे कहना पड़े कि शौचालय जाने के बाद हाथ धोना जरूरी है, उस देश के किसानों को कहा जा रहा है कि आप पोर्टल पे आकर रजिस्टर करिए। ये पूरी तरीके से माफिया सिंडिकेटों का देन है। वो कौन लोग कर रहे हैं, बटेदार एक भी कर रहा है, जिसके पास 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन है वो एक भी पोर्टल पे आ रहा है? नहीं आ रहा है साहब। 17 करोड़ हमारे यहाँ करीबन 17 लाख किसान बिहार सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, जिसमें से पिछली बार मात्र 3.5 लाख लोगों ने अपना धान अधि प्राप्ति कराने का काम किया, 2.5%। और 2.5% काम होने के बाद नीतीश कुमार बड़े बड़े पेपरों में बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, साहब किसान का धान अगर आपको खरीदना है तो जो आपने 16 साल पहले मंडी बंद किया था उस मंडी को चालू करो, और ये कानून लाइए कि अगर एमएसपी से नीचे की खरीदारी होगी तो 6 महीने का जेल होगा। अगर आप ये कानून ला सकते हैं और ये कानून के ऊपर आप बात कर सकते हैं तभी आप किसान हित की बात कर रहे हैं, अन्यथा आप पूरी तरीके से उद्योगपतियों की दलाली कर रहे हैं।
अच्छा, ये आप मानते हैं कि बिल्कुल उद्योगपतियों की सरकार है?
बिल्कुल है। 900 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है, कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। और अभी बॉम्बे में क्या हुआ तो आप खुद देखिए ना किसकी सरकार है। कोरोना काल में पूरा देश बंद था और अडानी और अंबानी का इनकम बढ़ रहा, वो कौन सा धंधा कर रहे थे भाई साहब? जब हमने खरीदारी करनी बंद कर दी, हमने चीजें लेनी बंद कर दी, बाजार बंद है, आप कौन सा ऐसा बिजनेस कर रहे हो? अंबानी के पास 6 ही इंडस्ट्री है, 6 में से 4 उसकी सर्विस इंडस्ट्री है, मतलब लोगों को सर्विस दे के कमाता है। जियो, रिलायंस स्मार्ट, ये सर्विस देने वाली कंपनियां हैं, टाटा नहीं है वो, टाटा के पास 135 कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, ये समझना होगा। जिस प्रकार से हमारे देश के लोगों को समझना होगा कि धर्म हमें ये सिखाता है पूजा पाठ करना, वोटिंग करना नहीं, जाति हमें सिखाता है संस्कार, हमें वोटिंग करना नहीं, ये समझना होगा।
पेट्रोल डीजल बढ़ने का तो समझ में आ रहा है कि सरकार की कंट्रोलिंग है, सरसों तेल पर क्या कहेंगे?
सरसों तेल, सर आपने पीछे कहा, आप निकाल के देख लीजिए सरकार का, आपने कहा दलहन पे 20% का हमें जो है इस बार ज्यादा हमारे दलहन हुआ, आप मलेशिया से पाम ऑयल लेना बंद कर दिए, किसके कहने पर बंद किए? फॉर्च्यून कंपनी का तेल की कंपनी है वो किसकी है? अडानी साहब की है। आप रिफाइंड पे 47% का एक्साइज ड्यूटी लेते हो, क्यों लेते हो भाई? अभी छठ है हमारे यहाँ नीतीश कुमार, एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, रिफाइंड का भाव गिर जाएगा, अभी सरसों तेल का भाव गिर जाएगा। आपने कहा कि 20% हमारे उत्पादन ज्यादा हुआ है और फिर भी 80 रुपए का तेल 230 रुपए में बिक रहा है। उत्पादन ज्यादा होगा तो वैल्यू कम होगी, महंगाई कम होगी। आपने क्या किया, डीजल का भाव बढ़ा दिया, अब 10 रुपए कम कर दिया। क्या एक भी बस का भाड़ा कम हुआ अभी तक? एक भी ट्रेन का भाड़ा कम हुआ अभी तक? तो आप कहीं ना कहीं व्यापारियों की सरकार है, आप जनता की सरकार नहीं है, कतई नहीं, और किसानों की तो है ही नहीं, और छात्र नौजवानों को आप फेसबुकिया बना के छोड़ दिए हुए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति सिखा रहे हैं आप। वो दिन भर फेसबुक पर लगे हुए हैं, उन्हें रोजगार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप पकौड़े की बात कर रहे थे, आज जो कमर्शियल गैस है वो 2000 रुपए से ऊपर का हो गया साहब, अब तो पकौड़ा भी आप महंगा कर दीजिएगा, तो पकौड़ा भी बना ले जाएगा, आपने नहीं छोड़ा। जिस नाली के पानी से गैस आप उत्पादन करने की बात कर रहे थे, शाहनवाज हुसैन साहब ने कहा कि इथेनॉल की इतनी फैक्ट्रियां लगा दूंगा कि पूरे बिहार में इथेनॉल इथेनॉल होगा, और रीगा चीनी मिल का क्या हुआ हजूर? रीगा चीनी मिल का क्या हुआ? जो उद्योग था उसे क्यों बंद करा दिया आपने? मोतिहारी चीनी मिल का क्या हुआ, जहां आपने कहा कि मैं अगली बार आऊंगा तो चाय पीऊंगा, आपकी चाय इंतजार कर रही है, स्टेशन पे चाय बेचते बेचते आप देश बेचने निकल गए हैं मोदी जी। इसलिए हमें सोचना होगा, हमें इस पर विचार करना होगा और विपक्ष को एक होना पड़ेगा, तब जाके ये धर्म और जाति के ठेकेदार और उद्योगपतियों के दलाल की सरकार को हटा सकते हैं।
अनिल जी, आपने कहा कि विपक्ष को एक होना पड़ेगा, आपको लगता है कि विपक्ष एक हो पाएगा 2024 से पहले?
अगर ईडी और सीबीआई का डर विपक्ष अपने जहन से हटा दे तो विपक्ष आज भी एक हो जाएगा।
लेकिन बिहार चुनाव से पहले विपक्ष के महागठबंधन में टूट होने के कारण क्या है?
सीबीआई और ईडी, मैं आपको बिल्कुल आपके सामने कह रहा हूं, सीबीआई और ईडी का डर दिखाया गया आरजेडी को। अगर कांग्रेस और आरजेडी एक होती तो दोनों सीटें हम जीत रहे थे। आदरणीय पप्पू यादव ने तो खुद के कहा कि वो बी टीम के जैसा काम कर रहे हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए, वे विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, युवा है, एक युवा साथी है तेज प्रताप, तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता बन सकते हैं, उन्हें डरना नहीं चाहिए, विपक्ष उनके साथ और पप्पू यादव की पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाएगी जिस दिन वो सही विपक्ष की भूमिका में आ जाएंगे।
शरीफ,